हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे गीतामृत कार्यक्रम में। और जन्माष्टमी का पावन अवसर बस अब आने वाले रविवार को, बोलो जन्माष्टमी महामहोत्सव की हरी बोल। आज साउंड हरी बोल, ऐसा लग रहा है मैं ऑर्केस्ट्रा में कोई शो परफॉर्म कर, ये आवाज ठीक सुनाई दे रही है मुझे ही हो रहा है, नहीं ना? हरे कृष्ण। तो भगवान की योजना इस प्रकार की है कि ये चौथा अध्याय जिसमें भगवान विशेष रूप से अपने अवतरण के विषय में बताए हैं, और इस चौथे अध्याय में इन श्लोकों में ही बताए, जो श्लोक हम लिए जो इन महीनों से चल रहा है और जो पिछले बुधवार हमने लिया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे सीट खाली है। तो भगवान ने हमारे गीतामृत कार्यक्रम में इस प्रकार से ये आयोजित कर श्लोक रखे हैं कि हम उसी भावना में रहें। अब जन्माष्टमी आ रही है, तो पिछले बुधवार हमने ये प्रसिद्ध श्लोक लिया इस चौथे अध्याय का, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और दिव्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए भगवान, उनका जो दिव्य अवतरण है उसके पीछे कारण, उनके कार्य, उद्देश्य इत्यादि ये सब बता रहे हैं। तो हमने पार्ट वन लिया था, आज इस श्लोक का हम पार्ट टू लेंगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो भगवान यहां पर धर्म की संस्थापना, ये मुख्य मुद्दे को बताते हुए, जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी कि श्लोक का एक मुख्य मुद्दा होता है, तो ये श्लोक का मुख्य मुद्दा है धर्म संस्थापना। और इस धर्म संस्थापन के लिए भगवान को करना क्या पड़ता है? दुष्कृतियों का विनाश और साधुओं की सुरक्षा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो हम पिछले बुधवार भाग एक में जो जो चर्चा किए थे, हम एक क्विक रिकैप लेंगे संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश, ताकि आज के भाग का फ्लो भी हम समझ पाए। तो हमने पिछले बुधवार को श्लोक क्रमांक 7 और 8, आज का श्लोक है श्लोक क्रमांक 8। तो 7 और 8 में क्या संबंध है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। श्लोक क्रमांक 7 में भगवान ने कहा मैं कब और क्यों अवतार लेता हूं, और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उनके अवतरण के पश्चात वो करते क्या हैं। तत्पश्चात हमने परित्राण शब्द जो पहला शब्द है आज के श्लोक का उसे लिया था। परित्राण ये दो शब्दों से बना है, परि और त्राण, अच्छी प्रकार एवं पूर्ण रूप से सुरक्षा। तो भगवान अपने साधुओं की अच्छी प्रकार से और पूर्ण रूपेण सुरक्षा का एक कार्यक्रम बनाकर अवतरण होते हैं, ये भगवान पहले की पंक्ति में बता रहे हैं। और उसके पश्चात फिर हमने उसी अर्थ को लेते हुए अपरित्राण का अर्थ क्या हो सकता है, अपूर्ण रूप से सुरक्षा। और फिर हमने इस भौतिक संसार में जो विभिन्न प्रकार की सुरक्षित योजनाएं हम मनुष्य इकट्ठा करते हैं, जैसे कि बीमा योजनाएं अलग अलग प्रकार की, तो उसका परिणाम क्या होता है और वो किस हद तक हमें सुरक्षित रखती हैं इस भौतिक संसार में, इसकी व्याख्या हमने की थी। तो ये श्रृंखला आप देखिए कि अपरित्राण अपूर्ण रूप से सुरक्षा, परंतु कलयुग में जो कि इस भौतिक संसार में सबसे अधम युग बताया गया है, कलयुग, इस कलयुग में पूर्ण रूप से असुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा का जो भ्रम हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उस भ्रम के पीछे जो सबसे बड़ा घात माया देवी करती है, तो कितनी घातक जो माया देवी होती है कि सबसे पहले हमारे सामने सुरक्षा का एक आवरण तैयार करती है और हमें भ्रमित कर फिर हमारे ऊपर वार होता है। तो इसलिए पूर्ण रूपेण असुरक्षा, ये है कलयुग का लक्षण। तो परित्राणाय साधु नाम, जो दूसरा शब्द हमने लिया था पिछली बार, कि भगवान जब सोच समझकर संस्कृत का ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं, परित्राण अर्थात पूर्ण रूपेण सुरक्षा, भगवान किसे प्रदान करते हैं, कौन है वो योग्य पात्र भगवान के इस परित्राण, तो वो है साधु। अब प्रश्न है कि प्रामाणिक साधु कौन है, क्योंकि कोई भी यदि साधु का वेश धारण कर या अपने आप को साधु कहकर ये क्लेम करे कि ये श्लोक भगवान ने मेरे लिए कहा है, नहीं, उस साधु को सिद्ध करना होगा। और इसके विषय में भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे ये श्लोक हमने लिया था, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधु आभूषणा, कि ये आभूषण होते हैं साधु के, सहनशीलता करुणा सभी देहधारियों के लिए वो एक सुरद होता है, और शांत बिना शत्रु को अपने जीवन में बनाए, और यदि शत्रु बन भी जाए तो वो शांत रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो इन आभूषणों को सुसज्जित करता है अपने ऊपर। और साधु शब्द, ये साध शब्द से बना हुआ है, साध का अर्थ समाप्त एवं पूरा करना, जीत लेना, वश में कर लेना। तो साधु वो व्यक्ति है जिसने अपनी इंद्रियों को और मन को वश में रखा है, जिसने जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया है। और भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ये जो शब्द है साध, इसका अर्थ यह है कि जो अपने अनर्थों का निवारण करते हुए और अपनी शुद्ध भक्ति और साधना से भगवान को जो जीत लेता है वो है एक प्रामाणिक साधु। तो संस्कृत का ये एक उद्गार है, साधु का अर्थ है श्री कृष्ण साधयति इति साधु, जिसने श्री कृष्ण को अपनी शुद्ध साधना से जीत लिया हो। तो भगवान अब इस हद तक किसी व्यक्ति को साधु कहे हैं। अब देखिए, भगवान ने तो आज के श्लोक में कह दिया परित्राणाय साधु नाम, परंतु भगवान इस हद तक नवे अध्याय में कह दिए कि यदि कोई साधु गलती से, अच्छा ये बात ध्यान में रखना होगा, गलती से एक्सीडेंटली यदि उसे सुदुराचार हो जाता है, जानबूझकर नहीं, गलती से यदि सुदुराचार हो जाता है तब भी भगवान का मंतव्य है कि वो उसे फिर भी साधु मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भजन में लगा हुआ है और अनन्य भाव का जो भजन है, अंत में हमने उसकी व्याख्या की थी, निरंतर भजन। किसे याद है निरंतर शब्द का अर्थ क्या है? बिना रुकावट, विदाउट इंटरवेल। निरंतर ये दो शब्दों से बना है, निर और अंतर, विदाउट इंटरवेल। तो वो भजन जो बिना ये सारे रुकावटों के हो, और ऐसा साधु जो बिना रुकावट के अनन्य भाव से भजन कर रहा हो, यदि गलती से उससे सुदुराचार हो जाता है तो भगवान उसे बोल रहे हैं कि वो साधु फिर भी है। तभी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मुझसे तो बहुत सी गलतियां गलती से हो जाती हैं, केवल इतना ही काफी नहीं है। भगवान ने इसके साथ साथ ये भी क्या कहा है, अनन्य निरंतर भाव से जिसका भजन चल रहा है, भौतिक इच्छाएं, भौतिक शरीर, सांसारिक ऐश्वर्य, बुरी संगत, नास्तिक विचार, भक्ति सिद्धांत, सरस्वती ठाकुर चैतन्य चरितामृत में इन सब को कहते हैं ये अंतर है, हमारे भजन में बाधा ये सब लाते हैं। अब हमारा आज का सेशन शुरू होगा। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, परित्राण शब्द का एक अन्य अर्थ बलदेव विद्याभूषण देते हैं, बहुत ही सुंदर अर्थ वो देते हैं, एक अन्य अर्थ जो अब तक पिछले हफ्ते हमने समझा उसके अलावा। तत्पश्चात इसकी चर्चा भी हम पिछली बार शुरुआत किए थे, भगवान के द्वारा पांच प्रकार की साधु सुरक्षा। दुष्कृति शब्द की व्याख्या, विनाश शब्द की व्याख्या, भगवान द्वारा दुष्टों का विनाश, और अंततः भगवान ने आज के श्लोक में धर्म संस्थापना एवं युगे युगे शब्दों की व्याख्या की। तो आइए देखें कि परित्राण इस शब्द का एक अन्य अर्थ बलदेव विद्याभूषण किस प्रकार से देते हैं। तो वो कहते हैं, अनिष्ट में प्रवृत्त व्यक्ति का निवारण। यदि ये हिंदी आपको कठिन लग रही होगी तो हम थोड़ा सरल कर बताते हैं, समझ में आ गया आपको? अनिष्ट में प्रवृत्त व्यक्ति का निवारण। देखिए, कई बार भाषा का व्याकरण हम नहीं जाने, तो ये जो लाइन है, अभी अभी मैं ये लाइन को पढ़ते हुए सोच रहा था कि यदि व्याकरण हम ठीक से नहीं जानेंगे तो प्रश्न क्या उठेगा हमें, निवारण। निवारण का अर्थ होता है खत्म करना, निवारण का सरल भाषा में अर्थ है खत्म करना। तो निवारण यदि हम ठीक से न समझें इसके व्याकरण को, तो हो सकता है कि हमारी व्याख्या ऐसी हो कि भगवान व्यक्ति का निवारण कर देते हैं जो अनिष्ट में होता है। अनिष्ट का निवारण करते हैं व्यक्ति के अंदर से, व्यक्ति का निवारण नहीं करते। क्यों? ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई ऐसे दार्शनिक हैं जो हमारे शास्त्रों के ऐसे अलग अलग वाक्यों को लेकर उसका अर्थवाद करते हैं। जैसे कि कई जो मायावादी या ब्रह्मवादी होते हैं, उनका किसी समस्या के प्रति समाधान क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है, उसको मोतियाबिंद हुआ है, कैटरैक्ट हो गया, तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि निकाल देते हैं, क्या? आंख, आंख निकाल देते हैं, न रहेगी आंख न बनेगा मोतियाबिंद। तो प्रभुपाद कहा करते थे मायावादियों का समाधान इस प्रकार से होता। तो अनर्थ हमारे हृदय में यदि आ रहे हैं तो उनका समाधान क्या है? जैसे इसका अर्थवाद कर निवारण कर दो, व्यक्ति का ही पर्सनैलिटी खत्म कर दो, न रहेगा पर्सनैलिटी, न रहेगा अनिष्ट, न कोई अनर्थ। परंतु बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य वो यहां पर बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान जब ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं परित्राण, कि पूर्ण रूपेण वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो केवल भौतिक स्तर पर नहीं, वो हरेक स्तर पर अपने साधक की जितनी खामियां हैं उसको येन केन प्रकारेण निकालते हैं, बाहर फेंकते। कृष्णा नेवर इज इंटरेस्टेड इन सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। एक होता है सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, एक होता है पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कि यदि रक्त में प्रदूषण है तो रक्त को शुद्ध करो तब जाकर खुजली दूर होगी। केवल उस पर फूंक मारने से अच्छा लगेगा वो निवारण नहीं है उस समस्या का। तो इसलिए परित्राण का ये जो एक अन्य अर्थ, ये हम आज के हमारे सेशन में शुरुआत में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे चलकर भगवान जो पांच प्रकार की साधु सुरक्षा प्रदान करते हैं उसमें समझ में आएगा कि भगवान का जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो कितना कंप्लीट और परफेक्ट है। परंतु उससे पहले हम यदि देखें तो मैं जब आज पढ़ रहा था हमारे आचार्यों की व्याख्या तो उसमें मुझे समझ में आया और मैं अपने शब्दों में उनकी व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि मटेरियल प्रोटेक्शन श्रील प्रभुपाद के अनुसार और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार तीन इसके एस्पेक्ट्स होते हैं मटेरियल प्रोटेक्शन के इस संसार में। क्योंकि होता क्या है कि जब तक हमें इस संसार में किसी ना किसी प्रकार की सुरक्षा मिलती रहती है तो हम भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होते। जैसे बच्चा है, बच्चे को जब तक उसके खिलौने आनंद प्रदान करते रहते हैं तब तक वो मां को याद नहीं करता। जैसे ही खिलौने चले गए या कुछ हुआ या भूख लगी या चोट लग गई कहां पर, तब जाकर मां की याद आती। तो मां की विस्मृति बच्चे के लिए एक कारण क्या बन जाता है कि उस बच्चे की स्मृति मां के अलावा किसी चीज में। वैसे ही जब हमारी स्मृति, जब हमारा विश्वास हमारे माए बाप राधा मदन गोपाल के अलावा कहीं हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे कहते हैं मटेरियल प्रोटेक्शन। तो उसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद कहते हैं मटेरियल प्रोटेक्शन इज देयर इज बट इट इज टेम्पररी, अशाश्वत है। इस संसार की जो सुरक्षा है उसको परित्राण नहीं बोल सकते क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, वो नित्य सुरक्षा नहीं है। इसलिए बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, ये हमारा शरीर, ये शरीर जिसको हम इतना खिला पिला रहे हैं, इतना इसका संरक्षण हम कर रहे हैं और इस शरीर से हम कितना अपेक्षा रखते हैं कि ये शरीर हमारा कितना संरक्षण हमें प्रदान कर देगा। और ये शरीर ही धोखा देता है। कितना इसको खिलाया, कितना इसको सजाया, कितना इसको संवारा है अब तक हमने, इसकी व्याख्या पहले भी हम कर चुके हैं, कितना खर्चा इसके ऊपर किया है अब तक हमने। और अचानक ये शरीर जो है एक दिन धोखा दे देता है। ये शरीर के अंदर जितने हमारे पुर्जे हैं, पुर्जे अचानक कोई ना कोई एक ऐसा धोखा दे देता है। हार्ट को यदि हम लें, जिसके ऊपर कितना भरोसा है हमको, कितना भरोसा है ये हमारे हृदय के ऊपर कि इत्मीनान से नींद की गोली लेकर हम रात को सो जाते हैं कि ये धड़क रहा होगा, सुबह उठूंगा तो भी धड़कन चालू रहेगी, है कि नहीं। और कई बार हार्ट अटैक, कईयों को सोते सोते हार्ट अटैक आ जाता है, आंख खुलती नहीं सुबह, हमेशा के लिए सो गए जैसे कहते हैं। एक मैं हमारे भक्त को जानता हूं बंबई के, उनको नींद में, गहरी नींद में उनको फिट्स का अटैक आया। फिट्स क्या था? मिर्गी, मिर्गी, फिट्स को मिर्गी बोलते हैं, नहीं जानते मिर्गी मराठी में क्या बोलते, फिट्स बोलते। तो ये जो उसकी यहां की हड्डी कॉलर बोन, ऐसा फिट्स का अटैक नींद में कि ये कॉलर बोन में फ्रैक्चर हो गया। एक साल तक बेड रिडन, एक साल वो व्यक्ति, अभी खैर ठीक है वो, नींद में कभी कोई हिस्ट्री नहीं ये फिट्स का, इसका कोई हिस्ट्री कभी कुछ नहीं। तो ये शरीर, एक हमारे शास्त्रों में एक ऑब्जर्वेशन हमारे शरीर के विषय में किया गया है, सुंदर ऑब्जर्वेशन है, सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोफाउंड है, कि हम ये शरीर को कौन सा फ्यूल डाल डालकर जिलाते हैं, रोज भोजन खाते हैं, तो भोजन इसके अंदर डालते हैं और हष्ट पुष्ट इसको रखते हैं। तो इस भोजन का उदाहरण लिया गया है कि वही भोजन जिस पर भरोसा रखकर हम हमारे शरीर को सुरक्षित हष्ट पुष्ट बनाकर रख रहे हैं, उसी भोजन को शरीर में न डालकर एक दो दिन ऐसे ही रखो, वही दाल चावल को रखो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, क्या होगा, फिर सड़ जाएगा। तो वही अन्न, वही दाल चावल कुछ समय बाद जो सड़ने वाला है, वो हमारे शरीर के अंदर हम डालते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा शरीर फ्रेश रहेगा, ताजा रहेगा। अरे अगले दिन वो क्या बना देता है उस दाल चावल का, वो देखो। बेचारे दाल चावल बोले हम फ्रिज में भले थे, कम से कम और दो दिन चल जाते। तो सबसे पहले टेम्पररी, उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद कहते हैं मटेरियल प्रोटेक्शन इज नॉट जस्ट टेम्पररी, इट इज इनकम्प्लीट। तो यहां पर दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है कि एक तो हाँ टाइम के विषय में प्रभुपाद कह रहे हैं, इनकम्प्लीटनेस रेफर्स टू द टाइम फैक्टर, नो सॉरी द क्वांटिटी, एंड टेम्पररी इज इन रिलेशन टू द टाइम फैक्टर। तो यहां पर यदि क्वांटिटी वाइज भी देखा जाए और समय को लें तो दोनों को यदि लें तो अपूर्ण है, अपरित्राण इसको हम कहेंगे, इनकम्प्लीट। इसलिए यदि किसी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति पेशेंट जाता है और डॉक्टर को कहता है कि मेरी ये तकलीफ है, तो कोई भी डॉक्टर ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई I'll give you complete relief from this ailment or this problem. No one can claim complete relief except for the Supreme Personality of God. Not only that, the doctor says there will be side effects. तुम्हारा सरदर्द तो ठीक हो जाएगा इस गोली से, लेकिन एसिडिटी होगी, उसके लिए दूसरी गोली देता हूं. तो साइड इफेक्ट्स का अर्थ होता है कि इस संसार में जब हम सांसारिक रूप से कोई सुरक्षा अपेक्षित रखते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि हमें सुरक्षित रखने के लिए किसी और को असुरक्षित करना पड़ता है, माया देवी को. So our protection is at the expense of someone else's precarious condition. जैसे कि कोई builder गगनचुंबी इमारत बनाता है, skyscraper बनाता है. तो स्काई स्क्रेपर बनाने के लिए बेचारे कोई झुग्गी झोपड़ी वहां पर थी, उनको सबको बाहर निकालता है. तो उनको घर से बाहर निकाला और किसी का घर बसाया, तो वहां पर जो इतने घर बसाए वहां पर वो लोग रह रहे हैं, बट एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स बिकमिंग होमलेस. तो ये एक उदाहरण है कि कैसे इस संसार में हम अपने लिए जो सुरक्षा की चीजें इकट्ठा करते हैं, हम ये नहीं जानते कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने अलग अलग जीवों पर हो रहे हैं, अलग अलग स्थितियों में, जगहों पर, समय पर. यू मे यूज अ रबर बैंड, बट यू मे नॉट नो दैट रबर बैंड वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन सम अदर अंडर डेवलप्ड कंट्री where the laborers were oppressed and tortured to manufacture that rubber band, but you are using very innocently. This is how material world is designed, always with side effects. kyon? kyunki sab jagah par hidden agendas hote hain. jahan par hidden agendas hote hain, wahan par Prabhupad kehte hain ki ye sab kuch aayega, temporariness, incompleteness and having side effects. जैसे एक कहानी है, एक बहुत बड़ा जमींदार था और उसे बहुत दिखावे का शौक था. उसके ऐश्वर्य को दिखाना उसको बहुत अच्छा लगता था. तो उसने हाल ही में एक नौकर को रखा था जो उसका निजी काम करता था, उसके लिए खाना पकाता था, दिखने में वो अच्छा था, इसलिए उसको ये जमींदार दिखाता था अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को बुला बुला कर कि मेरा नौकर देखो कितना सुंदर है. तो एक दिन इसने ऐसे ही एक जलसा रखा था अपने घर पर, बहुत से इसके सगे संबंधी रिश्तेदार इत्यादि इसके बंगले पर आए हुए थे और इसने अपने इस नए नौकर को कहा था कि भाई तू थोड़ा सज संवर कर और अच्छा फीस्ट बना. तो इसने बनाया. अब ये सबको परोस रहा था, सर्विंग कर रहा था, तो इसके हाथ में दाल का पतीला था. तो सर्विंग दाल करते करते हुआ क्या, भरा हुआ पतीला था, ठीक से पकड़ नहीं पाया, तो थोड़ी सी दाल अपने ही मालिक के उसके नए शेरवानी के ऊपर गिर गई. थोड़ी सी दाल के कुछ बूंदे उसके शेरवानी के ऊपर गिर गए. ये आग बबूला हुआ. दो उसको तमाचे लगाए सबके सामने और फिर इसने अपने जो उसके और दो बॉडीगार्ड थे उसको बुलाया और कहा कि इसको धक्के मार मार कर बंगले से बाहर निकालो. और बंगले से नहीं, ये पूरे शहर से इसको मेरे शहर में दिखना नहीं चाहिए। उसका अपराध क्या था? दो बूंद दाल उसके हाथ से गिर गई थी। तो जब इतनी बड़ी सजा उसको सुनाई गई तो उसने क्या किया, वो जो पूरा दाल का पतीला भरा हुआ था पूरा डाल दिया। अब आप सोच रहे हैं मैं होता मैं भी वही करता, लेकिन इसने जो किया इसके पीछे इसने कारण बहुत ही एक गहरा कारण बताया। इसने कहा कि देखो मुझसे गलती हुई, लेकिन उस गलती की जो सजा आप दे रहे हैं वो मैच नहीं हो रही, तो उसको मैच करने के लिए मैंने इतनी दाल डाली कि अब आपका नाम खराब नहीं होगा, नहीं तो दुनिया में आपका नाम खराब होता। कह रहे दो बूंद दाल के लिए इसने ऐसी सजा इसको सुनाई, इसलिए मैंने उस अपराध को बड़ा कर दिया ताकि आपका नाम खराब ना हो। तो जमींदार बहुत खुश हुआ, दाल गल गई। तो इस संसार में जो मालिक होता है वो इस प्रकार की सुरक्षा देता है, भौतिक मालिक इस प्रकार की सुरक्षा देता है, दो बूंद दाल के गिर गए, चल भाई तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब बाहर निकल यहां से। तो एक उदाहरण से हम बताने की कोशिश करेंगे, बारिश का मौसम चल रहा है, उपयुक्त उदाहरण है इस भौतिक संसार की तकलीफें जिनसे हम अपने आप को असुरक्षित पाते हैं यदि उसकी तुलना हम बारिश से करें, घमासान बारिश। तो बारिश के मौसम में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते हैं? अम्ब्रेला, थोड़ा हिंदी में बताएंगे, छाता, रेनकोट, छाता। तो अब अभी छाते भी अलग अलग साइज के आते हैं ना, बच्चों के लिए बेबी अम्ब्रेला, एडल्ट बड़ों के लिए अलग। तो मान लीजिए इस भौतिक संसार की जो सुरक्षा अगर छाते से की जाए तो समस्या वो घमासान है, लेकिन जो काउंटर मेजर इस संसार में हमको मिलता है, सुरक्षा मिलती है, वो ये साइज छाते की। अब कल्पना कीजिए कि बाहर घमासान बारिश हो रही है और आपको इतनी इतना छोटा सा छाता दिया जाओ, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? वो जो प्रभुपाद ने कहा टेम्पररी इनकम्प्लीट साइड इफेक्ट सब कुछ है इसके अंदर। तो कलयुग में, हाँ अब कलयुग का छाता आपको बताएंगे, वो तो हुआ पिछले युगों का छाता, ये है कलयुग का छाता। अगर इसको आप पूछें कि आपके हाथ में क्या है, कहेगा छाता है, छाता है। वैसे ही कलयुग में आप किसी को पूछो आर यू प्रोटेक्टेड, यस छाता है। हाउ मच आर यू प्रोटेक्टेड, हाउ मच आर यू बीइंग सेव्ड फ्रॉम द मिजरीज द डाउनपोर ऑफ दिस वर्ल्ड, डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। तो आप देखिए, हाल ही में मैं अपने वापसी में एक मैं ये न्यूज चैनल देख रहा था, एक बंबई में हमारे एक जान पहचान के उनके घर पर तो न्यूज चैनल चल रहा था, तो मैं देख रहा था कि न्यूज चैनल में आजकल, बहुत अरसे बाद मैंने एक न्यूज चैनल देखा, आप लोग तो वाकिफ होंगे आजकल न्यूज चैनल में किस प्रकार से वो लोग न्यूज दिखाते हैं। आजकल न्यूज चैनल में न्यूज भी वो लोग इतनी मसालेदार बनाकर दिखाते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि वर्थ स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि नहीं वर्थ कमिंग ऑन द न्यूज चैनल। बिल्ली छज्जे पर अटक गई, 3 घंटे से बिल्ली छज्जे पर अटकी हुई है। हमारे संवाददाता वहां पहुंच चुके हैं और अब वो मुआयना कर रहे हैं कि बिल्ली छज्जे पर पहुंची कैसे। आंखों देखा हाल आपको बताएंगे, सनसनी खबर है बिल्ली छज्जे के ऊपर। बने रहिए, ब्रेक के बाद फिर से आएंगे हम। ये न्यूज है आजकल, और इतना ही नहीं, कई बार कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, कहीं बाढ़ आ गई तो उनके संवाददाता वहां पहुंच जाते हैं छतरी लेकर, माइक लेकर। वो बेचारा डूब रहा है बाढ़ के अंदर, आपको कैसा लग रहा है? पानी ठंडा है गर्म, कैसा है पानी, बाढ़ का पानी? अरे उसको बाहर निकालो, उसको बचाओ वहां पर। हाँ, कैमरा थोड़ा इनके ऊपर लगाए, डूब रहे हैं, बता नहीं रहे कि पानी कैसा, अंदर मछलियां हैं कि नहीं। तो उसको सनसनी बनाने के लिए, उसको सुरक्षा तो छोड़, उसको वहां पर उसके बेचारे की पीड़ित अवस्था पर यहां पर पैसे कमाया जाए। कहीं बम विस्फोट हो गया, सोचिए बम विस्फोट होगा, इतने लोग मर गए और यहां पर न्यूज चैनल अपना संवाददाता भेजा हुआ है, और हमारे संवाददाता वहां पर पहुंच गए, मिस्टर अदला बदलू, पता नहीं नाम क्यों याद आया मुझे, अदला बदलू मतलब वो संवाददाता उनके अदलते बदलते रहते हैं। तो हमारे संवाददाता अदला बदलू वहां पर पहुंचे हुए हैं, बम विस्फोट हो गया है और RDX बम था और ऐसा विस्फोट है, 50 लोग वहां पर ही धराशायी घायल हो गए। हमारे संवाददाता वहां पर हैं, आंखों देखा हाल बताने के लिए। संवाददाता बताइए, अदला बदलू जी क्या हो रहा है वहां पर, सुनाई दे रहा है? वो कहते हैं हाँ, यहां पर एक पीड़ित व्यक्ति, मैं उसके सामने हूं, कैमरा लगाया हुआ है और उसको मैं पूछने जाने वाला हूं। तो ये बम अचानक फटा, प्रश्न देखो उसका क्या है, बम अचानक फटा? तो वो बेचारा, उसकी एक टांग टूटी हुई है, वो भी कुछ कम नहीं, वो भी जवाब देता, नहीं मैंने देखा बम को, बम ने मुझे देखा, थोड़ा शर्माया, शर्माते लजाते हुए मेरे पास आकर बैठा, वो बम मेरे पास आकर बैठा, शर्माते हुए मुझे पूछा, बाय द वे मैं बम हूं, फट लूं? तो मैंने भी कहा भाग गए हो, फट लो। तो ये जो सुरक्षा आजकल दी जा रही है, इसको परित्राण नहीं कह सकते। इसलिए जो प्रभुपाद ने कहा है, मटीरियल वर्ल्ड स्पेशली कलयुग, द प्रोटेक्शन इज टेम्पररी इनकम्प्लीट विथ साइड इफेक्ट्स। तो कृष्णास प्रोटेक्शन, अब यही उदाहरण को हम लेंगे, और कृष्ण इनका प्रोटेक्शन क्या है जो भगवान कह रहे हैं परित्राणाय। तो भगवान कहते हैं, न तो मैं तुम्हें कोई रेनकोट दूंगा, न तो मैं तुम्हें कोई छतरी दूंगा। तो कोई कहे ये हैं आपके भगवान, न तो रेनकोट देने का वादा कर रहे हैं, न छतरी देने का वादा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं प्लेन में बिठाकर तुमको उस बारिश के ऊपर ले जाऊंगा, प्लेन में बिठाकर उन बादलों में से जो बारिश या समस्याएं आ रही हैं, आई टेक यू बियॉन्ड द क्लाउड्स, फॉरगेट अबाउट अम्ब्रेला, रेनकोट और इवन रेन। ये है परित्राणाय साधु, इसको कहते हैं परित्राण। क्योंकि हम लोग रेनकोट और छतरी के परे सोच ही नहीं सकते, इसलिए हमें विश्वास ही नहीं आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर ऐसी सुरक्षा भी हमें प्रदान कर सकता है कि हमें बादलों के ऊपर ले जाए। नहीं, और कई बार हम यदि किसी को कहें कि भाई बादलों के ऊपर भगवान का एक आध्यात्मिक संसार है जहां पर ऐसी समस्याएं नहीं जैसी यहां पर हैं, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि बादलों के ऊपर भी कोई संसार है, और यदि है भी तो उनको विश्वास नहीं होता है कि आपके भगवान ले जा सकते हैं। और कई तो इस हद तक कि यदि है भी भगवान आपके ले जा भी सकते हैं, लेकिन मैं इतना पतित हूं कि मुझे नहीं ले जा सकते, नहीं उठा पाएंगे मुझे। तो यह समझ लेना चाहिए कि हमें जब तक वो पूर्ण विश्वास भगवान के पूर्ण सुरक्षा के ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम भगवान के इस विमान में आरूढ़ नहीं हो पाएंगे। तो अब भगवान द्वारा पांच प्रकार की साधु सुरक्षा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फिर से आपको याद दिला दूं, क्योंकि साधु शब्द आते ही हमारा एक चैनल चेंज हो जाता है। हम सोचते हैं साधु मतलब वही गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, लंबी दाढ़ी, बाल इत्यादि, तिलक, कंठी माला। हमने साधु की परिभाषा जान ली है, हर एक कोई व्यक्ति जो उन आभूषणों को पहना हुआ है जिन आभूषणों की हमने चर्चा की, और जो अनन्य भजन में लगा हुआ है, वो है साधु। तो भगवान के द्वारा पांच प्रकार की साधु सुरक्षा इस प्रकार की है। सबसे पहले अज्ञान से सुरक्षा, तत्पश्चात त्रुटि से सुरक्षा, अनर्थ से रक्षा, व्यसनों से रक्षा, और पांचवी है शत्रु से रक्षा। यहां पर अब हम समझेंगे कि परित्राण का जो अन्य अर्थ हमने लिया बलदेव विद्याभूषण द्वारा कहा गया, क्या था अन्य अर्थ? अनिष्ट में प्रवृत्त व्यक्ति का निवारण। तो यहां पर जो भी स्थितियां हमें असुरक्षित बनाती हैं, हमें अभी उस लॉजिक से पहले समझना है। अज्ञान हमें असुरक्षित बनाता है, हमारी गलतियां हमें असुरक्षित बनाती हैं, हमारे अनर्थ हमें असुरक्षित बनाते हैं, हमारे व्यसन और शत्रु। तो जो जो पहलू हमें इस भौतिक संसार में असुरक्षित स्थान पर लाकर खड़ा कर देते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं वो एक एक असुरक्षित स्थान या स्थिति का निवारण कर उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर आता हूं या सुरक्षित स्थिति में स्थित करता हूं। तब जाकर भगवान परित्राणाय साधु नाम जो कह रहे हैं उसको भगवान सिद्ध करते हैं। तो हम अब एक एक उदाहरण इसका लेंगे कि कैसे भगवान ने हर एक अपने अलग अलग भक्तों को इन एक एक असुरक्षित स्थानों से निकालकर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया, प्रोटेक्शन दिया उनको। तो अज्ञान से रक्षा के विषय में उदाहरण है ध्रुव महाराज। हम संक्षिप्त रूप में केवल इनका उदाहरण लेंगे क्योंकि इनकी कहानियां हम बहुत बार सुन चुके हैं। तो ध्रुव महाराज, 5 वर्षीय ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठना चाहते थे, बैठ चुके थे, और तिरस्कार उनका हुआ। उनके सौतेली मां सुरुचि ने उनका तिरस्कार किया और तिरस्कृत ध्रुव महाराज आग बबूले। अब आक्रोश इतना उनके अंदर, क्षत्रिय उनका भाव जाग उठा और बदले की भावना, बदले की भावना से ध्रुव महाराज निकले साधना करने, साधना करने निकले और वो भी मधुबन वृंदावन ब्रज की ओर गए। ध्रुव महाराज वृंदावन की ओर साधना करने जा रहे हैं भगवान श्री विष्णु की, परंतु भावना क्या है? बदले की भावना। तो उन्हें किसी ने सही ज्ञान नहीं दिया ध्रुव महाराज को कि किस भावना में तुम्हें तुम्हारी साधना करनी चाहिए। तो रास्ते में जब नारद मुनि मिलते हैं तो नारद मुनि जो उनकी परीक्षा लेते हैं, और नारद मुनि देखते हैं कि ये 5 वर्षीय ध्रुव के अंदर जो तीव्रता है, हालांकि उसका अप्रोच रिवेंज का है, लेकिन उसके अंदर जो तीव्रता है भगवान को प्राप्त करने की वो सराहनीय है। उसे केवल सही डायरेक्शन देना है मुझे, उसको चैनलाइज करना। इसलिए नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा कि हां भाई तुम साधना करने जा रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सा मंत्र का उच्चारण करो, किसके ऊपर ध्यान लगाओ और शारीरिक रूप से कौन सी क्रियाएं करो, कौन से आसन में रहो। तो वृक्षासन में खड़े थे ध्रुव महाराज, बहुत कठिन आसन है ये वृक्षासन। और हां 1-2 मिनट 5-10 मिनट के लिए हम खड़े हो सकते हैं, परंतु 6 महीना। तो ध्रुव महाराज नारद मुनि के द्वारा जो उन्हें प्राथमिक ज्ञान मिला, प्रिलिमिनरी नॉलेज, उसके पश्चात जब वो धीरे धीरे शुद्ध हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए और भगवान श्री वासुदेव के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, और जब श्री वासुदेव प्रकट हुए तो उन्होंने ध्रुव महाराज के कपोल के ऊपर अपना शंख स्पर्श किया और तुरंत दिव्य ज्ञान ट्रांसफर हुआ। ध्रुव महाराज भगवान को 6 महीने में प्राप्त कर लिए। कल्पना कीजिए, हमारा गीतामृत का कार्यक्रम 4 साल से चल रहा है, ध्रुव महाराज 6 महीने में साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो रहे हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि ध्रुव मेरा दर्शन तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसके अंदर अब तक वो दिव्य ज्ञान इसे प्राप्त नहीं हुआ है जिसके द्वारा ये मुझे सही रूप से पहचान पाए या मेरा गुणगान कर पाए या सही भावना में ये मुझे अपनाए। तो भगवान ने जो दिव्य ज्ञान का संचार किया ध्रुव महाराज के अंदर अपने स्पर्श से, तो वो दिव्य ज्ञान का संचार जो हुआ ध्रुव महाराज के अंदर भगवान के स्पर्श के द्वारा, भगवान ने कैसे रक्षा की ध्रुव महाराज की? अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर कर। तो यदि हम भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अज्ञान के वजह से असुरक्षित पाते हैं, तो ध्रुव महाराज का उदाहरण हमें जांच परखना होगा और यह विश्वास हमारे अंदर हमको दिलाना होगा कि चाहे हम 5 वर्षीय अज्ञानी बालक भी क्यों ना हो, या हम बड़े परंतु बाल बुद्धि वाले क्यों ना हो, बाहर से बड़े अंदर से बाल बुद्धि, यदि हमें भगवान श्री वासुदेव पर पूर्ण विश्वास है और शुद्ध भाव से हम अपने आप को समर्पित करते हैं जैसे ध्रुव महाराज नारद मुनि जो उनको कहे यथा अनुरूप उन्होंने किया, तो भगवान ने उनकी सुरक्षा की, उनके अज्ञान को नष्ट कर कर उनको ज्ञान प्रदान कर कर। और फिर ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं कि आपने जो ये ज्ञान का संचार मेरे अंदर किया है तो मुझे तो अब लग रहा है कि मुझे ग्लानी हो रही है, गिल्टी महसूस कर रहा हूं कि मैं बदले की भावना से, और एक सौतेली मां ने मेरे को क्या कह दिया, और क्या मेरी एक भौतिक इच्छा कि मुझे मेरे ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा पद चाहिए, कितने तुच्छ विचार मेरे थे। ये सब कुछ ध्रुव महाराज 5 वर्षीय, यही कहेंगे 5.5 वर्षीय, 6 महीने लगे ना उनको। तो ये सब विचार उनको आया कहां से? भगवान ने ये दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान किया। तो परित्राणाय साधु नाम, यहां पर ध्रुव महाराज का प्रतिद्वंद्वी उनका अज्ञान था, तो भगवान ने उस अज्ञान रूपी राक्षस को नष्ट कर ध्रुव महाराज की सुरक्षा की। अगला उदाहरण हमारी श्रृंखला में है त्रुटि से रक्षा। तो बलि महाराज से त्रुटि होने वाली थी, और हां एक दूसरे दृष्टिकोण से त्रुटि हो गई थी। बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य, इनको शुक्राचार्य इसलिए कहा गया है कि इंग्लिश में जिसको कहते हैं ना ओनली सेमिनल गुरु, केवल उस खानदान में वो रहे, खानदानी गुरु जिसको बोलते हैं। इसलिए बलि महाराज के सामने जब स्वयं भगवान प्रकट हुए और 3 पग भूमि मांगी, तो बलि महाराज पहले समझ नहीं पाए कि ये छोटा सा बौना ब्राह्मण है कौन। वामन देव जो कि एक छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में आए, 3 पग भूमि मांगी, बलि महाराज मुस्कुराए कि ये मांगा तो भी क्या मांगा। परंतु बलि महाराज ये नहीं पहचान पाए कि ये तो सबसे बड़ा लुटेरा बनकर आया है, ऐसे शुक्राचार्य ने बोला, और हैं भगवान सबसे बड़े लुटेरे। इस संसार में लूट लूट कर कोई व्यक्ति क्या लूट लेगा हमारा? कोई पैसे लूट लेगा, कोई जो हमारी शोहरत है वो लूट लेगा, कोई किसी की इज्जत लूट लेता है। भगवान हमारे पिछले जितने पाप और पुण्य जितने हैं वो सब लूट सकते हैं, जो कोई नहीं लूट सकता। तो बलि महाराज ने सोचा जैसे कि कोई अंबानी के पास जा रहा है, अंबानी पूछ रहा है, मांग, जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पता नहीं वो लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कल्पना कीजिए, कह दिया। और कोई व्यक्ति ने अंबानी से कहा कि मुझे पेंसिल चाहिए, पेंसिल रिलायंस की, मूर्ख कहेगा उस व्यक्ति को। तो यहां शुक्राचार्य जो पहचान गए, शुक्राचार्य इन्होंने बलि महाराज को रोक दिया, और शुक्राचार्य बलि महाराज से त्रुटि कराना चाहते थे कि नहीं देना, मुकर जा। बहुत सी स्थितियों में जो वचन दिया होता है उसे मुकर सकते हैं, जब जान पे बात आती है तो झूठ बोलना मुनासिब है। बहुत से उन्होंने अलग अलग उदाहरण और कारण प्रस्तुत किए कि कैसे कब झूठ बोला जा सकता है, टू सेव योर स्किन इत्यादि इत्यादि। और फिर शुक्राचार्य से गलती क्या, शुक्राचार्य बोले ये तो विष्णु है, सब कुछ लूट लेगा। बलि महाराज को जब ये पता लगा ये विष्णु है, तब तो मुझे शरणागत होना चाहिए, तब तो मैंने सही किया सब कुछ देकर। तो जो त्रुटि बलि महाराज से होने जाने वाली थी कि अपना वचन देकर मुकर जाना, उस त्रुटि से रक्षा भगवान ने बलि महाराज की, और ऐसी सुरक्षा की बलि महाराज का सब कुछ भगवान ने ले लिया 2 पग में ही, और फिर 3रे पग में भगवान ने बलि महाराज को भी ले लिया, उनको भी नहीं छोड़ा। और फिर वो कहे कि भाई आपने तो सब कुछ मेरा ले लिया है, सर्वस्व, मैं भी अपने आप को अर्पित कर दिया हूं। जैसे एक पुजारी होता है, पुजारी भगवान को भोग राजभोग अर्पित करता है, 56 भोग अर्पित करता है। अब कितने हमारे यहां पर राधा मदन गोपाल जी के पुजारी हैं जो अलग अलग समय पर कोई मंगल भोग ऑफर करते हैं, कोई राजभोग ऑफर करते हैं, कोई संध्या भोग ऑफर करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई हमारे पुजारी आए हैं, राजभोग ऑफर कर रहे हैं, पट बंद है, अकेला पुजारी और भगवान और राजभोग। गलत मत सोचिए आप कुछ। तो इदम नैवेद्यम क्लिम कृष्णाय नमः, ऐसे वो भगवान को ऑफर किए, भगवान ने कह दिया, बोलना शुरू किए, मदन गोपाल जी बांसुरी नीचे रखकर बोल रहे हैं, पुजारी जी राजभोग तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे राजभोग के बाद एक और चीज चाहिए। पुजारी का क्या हाल होगा, अंदर पट बंद है, अकेला, मदन गोपाल जी बात कर रहे हैं। मदन गोपाल जी कहते हैं, इस राजभोग को खाने के पश्चात मुझे तुम चाहिए। मतलब खाना नहीं है, तुम पूरा मुझे समर्पित। कैसा लगेगा उसे, अरे सेल फोन भी बाहर पड़ा है मेरा। SMS भी नहीं कर सकता किसी को। मान लो ये स्थिति में मदन गोपाल जी पुजारी को कहें और अचानक सब डोर्स लॉक हो जाए, भगवान बोले कि नॉट जस्ट दीज 13-14 आइटम्स, आई वॉन्ट यू ऑल्सो। बलि महाराज के साथ भगवान ने ही किया, तो इतना सब कुछ ले लेने, छीन लेने के पश्चात भगवान ने उन्हें सुतल देश का राजा बनाया और भगवान स्वयं द्वारपाल बने। भगवान ने सुरक्षा कैसे दी, बलि महाराज जिन्होंने सब कुछ अपना आत्मनिवेदन के वो मूर्तिमान स्वरूप, भगवान द्वारपाल बने और ऐसे द्वारपाल बने कि लक्ष्मी देवी वो आई ढूंढते हुए, अपने पति को ढूंढते हुए आई और लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज के समक्ष आकर एक ही निवेदन किया। आप हंसोगे इस निवेदन के ऊपर। लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज से कहा कि मेरा केवल एक ही निवेदन है जिसके लिए मैं आई हूं, आप जब आपके राजमहल से बाहर आते हो तो आप खाली डिसाइड कर लिया करो कि कौन से दरवाजे से बाहर आओगे। जैसे कि हमारे टेंपल हॉल से बाहर जाने के बहुत से रास्ते हैं, लेक्चर के दौरान बहुत से रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, यहां से भी रास्ते हैं, यहां से भी हैं, वहां से भी हैं। तो वैसे ही बलि महाराज के राजमहल के बहुत से ऐसे द्वार थे। तो लक्ष्मी देवी का अनुरोध बलि महाराज से क्या था, केवल इतना ही, वैकुंठ से आकर इतना निवेदन कर वो चली गई। आपको थोड़ा अचरज हो रहा है कि नहीं, ये क्या निवेदन किया, आप खाली डिसाइड कर लो कौन से दरवाजे से आप बाहर आओगे, क्योंकि भगवान स्वयं वामन देव जो उनके द्वारपाल बने वो इतना चौकन्ना रहते थे कि बलि महाराज यदि अचानक डिसाइड कर लिए कि नहीं मैं इस दरवाजे से नहीं, इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा, तो बहुत बड़ा महल था तो इस दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए उनको पूरे राजमहल को घूम के जाना पड़ता था। तो भगवान बलि महाराज दूसरे दरवाजे तक पहुंचने से पहले पहुंच जाते थे एज अ द्वारपाल अटेंड करने के लिए। और ये लक्ष्मी देवी देख के परेशान हो रही थी कि मेरे पति को ये बलि महाराज जितना दौड़ा रहा है रोज। तो ये एक नमूना, परित्राणाय साधुना, कि बलि महाराज की त्रुटि से रक्षा भगवान ने किस हद तक की। ये सारी कथाएं ऐसी है कि इनके ऊपर 7-7 दिन हम प्रवचन दें तो भी समझ में नहीं आएगा कि इनकी गहराई कितनी है, कि भगवान की कृपा और ये भक्तों के भक्ति की गहराई कितनी थी। तत्पश्चात अनर्थ से रक्षा भगवान ने देवराज इंद्र के अंदर कौन सा अनर्थ प्रचुर मात्रा में कूट कूट के भरा हुआ था, कौन सा? अभिमान, घमंड, अहंकार। तो ये जो अनर्थ देवराज इंद्र के अंदर अभिमान का, उस अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला और 7 दिन 7 रात ऐसी लीला जो नित्य काल तक प्रसिद्ध होने वाली है अपने ब्रजवासियों के साथ, और ऐसा अनूठा पराक्रम उन्होंने जो दिखाया, बहुत से कारणों में से एक प्रमुख कारण था देवराज इंद्र की सुरक्षा। उसके अंदर वो जो अनर्थ, उस अनर्थ को दूर करने के लिए भगवान ने ये इतनी बड़ी लीला रचाई, गोवर्धन लीला। तो भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो भगवान कोई इंद्र से बदला नहीं ले रहे थे, भगवान को किसी से बदला लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई मैचिंग तो होना चाहिए। तो भगवान कृपावश देवराज इंद्र, जो कि भगवान के भक्त हैं, हालांकि कर्म मिश्र हैं परंतु भगवान के भक्त हैं, भगवान के ही गवर्नमेंट के एक बड़े मिनिस्टर हैं कैबिनेट, तो उनके अंदर का वो अनर्थ दूर करना था, इसलिए भगवान ने कृपावश ये लीला के द्वारा उनको शुद्ध किया। उसके पश्चात व्यसन से रक्षा। तो यहां नलकुवर मणिग्रीव दामोदर लीला में हम इतनी बार सुने हैं कि ये दोनों जो कि ऐसे व्यसनी थे, व्यसनी आप लोग जानते हैं ना किसे कहते हैं, व्यसन समझ गए ना, बुरी आदतें। तो ये ऐसे व्यसनी कि कैलाश धाम में भगवान शिवजी के शुद्ध धाम में, और भगवान का धाम महेश धाम जो है वो भौतिक धाम, ये भौतिक संसार की तरह नहीं, 3 गुणों के अधीन। भगवान शिवजी का महेश धाम आध्यात्मिक संसार की जैसा है, वो नश्वर नहीं है, वो शाश्वत धाम है। तो भगवान शिवजी के शाश्वत महेश धाम में मंदाकिनी गंगा जो बहती है, यहां जो गोदावरी है, जितनी भी पावन नदियां हैं विशेष रूप से गंगा से संबंधित, वो सभी की जो स्रोत हैं या ओरिजिन जिसको कहेंगे मंदाकिनी गंगा, जहां से वो आ रहे हैं ये लोग सब, तो उस मंदाकिनी गंगा में नलकुवर मणिग्रीव नशे में धुत ऐसे स्थान पर ये लोग व्यसन में लगे हुए। अब कई बार हम देखते हैं कोई दारू पीकर पड़ा हुआ है, कोई पी रहा है दारू, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी यहां वहां, परंतु कोई यदि मंदिर में यहां बैठकर चढ़ाए हुए है कैसा लगेगा आपको? यहां पर तो मंदाकिनी गंगा और वो भी कैलाश धाम में सब साधु संतों के बीच वहां पर ये लगे हुए हैं, औरतों के साथ नग्न स्नान कर रहे हैं व्यसन में। तो नारद मुनि ने सोचा कि भाई मेरे बस में नहीं है, इनको तो भगवान दामोदर ही परित्राण वो कर सकते हैं। तो नारद मुनि जैसे होते हैं, जैसे नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भी कनेक्ट किया मेन पावर हाउस से, यहां पर भी नारद मुनि ने कनेक्ट किया, पहले तो डिस्कनेक्ट किया, कहां से? महेश धाम से डिस्कनेक्ट कर पूरा अर्थिंग कर दिया नंद भवन में, अर्थ में अशोक वृक्ष के रूप में, अर्जुन वृक्ष के रूप में। तो नारद मुनि जैसे प्रामाणिक साधु वो भगवान के कंप्लीट इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रमोटर्स हैं, वो एजेंट्स हैं, एजेंट्स वो पॉलिसी ले लेके घूमते हैं, पॉलिसी एजेंट्स होते हैं ना, वैसे नारद मुनि जैसे शुद्ध साधु भगवान के पॉलिसी एजेंट्स लेके लेके घूमते हैं। तो व्यसन से रक्षा भगवान श्री दामोदर ने की, नलकुवर और मणिग्रीव इनकी। शत्रु से रक्षा द्रौपदी वस्त्रहरण, ये जो एक कारण बना महाभारत के युद्ध का, प्रमुख कारण बना कि द्रौपदी का जो सतीत्व था उस पर लांछन लगाया गया और द्रौपदी की पतिव्रता को भंग करने के लिए कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और वो पूरी असत सभा, हमारे शास्त्रों में जहां वहां पर जो भी इसमें शामिल हुए उन सब को उस असत सभा का सदस्य माना गया। तो एक अकेली अबला द्रौपदी के ऊपर जो इतना बड़ा प्रहार हुआ, तो द्रौपदी की सुरक्षा उन शत्रुओं से और विशेष रूप से दुशासन से उस समय भगवान ने साड़ी बनकर किया। और वो द्रौपदी जो चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, याचना कर रही थी, परंतु कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया, उस समय अंत में हताश होकर जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ, जैसे यहां पर आप देखते हो, ऊपर कर हे गोविंद, हे गोपाल, जो भगवान द्रौपदी के भाई बने हुए, असली रक्षाबंधन इसे कहते हैं, हाँ ये ठीक है, बांध लेते हैं यहां पर, लेकिन एक भाई संसार में एक बहन की किस हद तक रक्षा कर सकता है। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि असली रक्षाबंधन को सिद्ध किया भगवान श्री कृष्ण ने, द्रौपदी की रक्षा जो की, द्रौपदी की जो पतिव्रता, उसका जो सतीत्व, उसकी जो लज्जा बचाई, वो सराहनीय है। तो शत्रु से सुरक्षा, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं शत्रु से सुरक्षा का। एक और उदाहरण गजेंद्र का है कि गजेंद्र जो कि यहां पर ये एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है कि गजेंद्र पिछले जन्म में, अपने पिछले जन्म में भगवान का अनन्य भक्त था और इस जन्म में गजेंद्र पूर्ण इंद्रिय भोग में रचा पचा था, परंतु विकट परिस्थिति में जब उसे उसका पिछला जन्म याद आया और गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा, तो उस समय भगवान ने केवल उसकी अनन्या भक्ति देखी, जो भगवान ने नवे अध्याय का वो श्लोक हमने लिया जिसमें भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, जो अनन्य भाव से, तो गजेंद्र ने अनन्य भाव से और किसी का सहारा न लेते हुए और किसी को अपना आश्रय न बनाते हुए केवल जब भगवान को पुकारा उस विकट परिस्थिति में, उस आद्र भाव से, तब भगवान उसकी सुरक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए, जैसे आप यहां पर देख रहे हो गरुड़ पर आरूढ़ होकर। तो ये हैं पांच प्रकार की सुरक्षाएं जहां पर भगवान पूर्ण रूप से निवारण करते हैं हमारी असुरक्षित स्थिति से, हमको निकालकर हमको सुरक्षित स्थिति में डालते हैं। इसलिए कोई इस संसार में नहीं कह सकता कि मैं अगले व्यक्ति की त्रुटि से रक्षा करूंगा, उसके व्यसनों से रक्षा करूंगा या अनर्थों से रक्षा करूंगा, जो भी हमने देखा। तो ये केवल भगवान श्री कृष्ण ही ये दावा कर सकते हैं, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही ये दावा कर सकते हैं, इसलिए भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं परित्राणाय साधुनाम। तो महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन की सुरक्षा। अब न केवल भगवान ने आज के श्लोक में और गीता में जो 9वें अध्याय में भगवान ने कह दिया, बल्कि भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन की सुरक्षा कर कर दिखाया। केवल वचनों से कहकर भूल जाना ये तो बहुत लोग करते हैं, परंतु भगवान ने अपने वचनों को सिद्ध किया। और बहुत सुंदर उदाहरण व्यासदेव जी देते हैं कि कैसे भगवान अर्जुन की रक्षा किया करते थे महाभारत में उन 18 दिनों में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। बहुत से अलग अलग प्रसंग हैं, परंतु उन प्रसंगों में हम नहीं जाएंगे, उदाहरण पर जाएंगे। तो उदाहरण बताया गया है कि जैसे हमारी आंखों की रक्षा कौन करते हैं, हमारे पलकें, ये उदाहरण हमने पहले भी कई दफा लिया है, जैसी हमारी आंखें होती हैं जो कि कितनी नाजुक होती हैं, ऐसे लगता है कि हमारी आंखें बस आंसुओं से बनी हुई हैं, और ये नाजुक हमारी आंखों की रक्षा कोई यदि कंकर या कोई तिनखा या जो भी कोई फॉरेन एलियन एलिमेंट अगर जाने की कोशिश करे, तो सबसे पहले हमारी जो पलकें हैं वो बिना पूछे, हमसे पूछती नहीं है पलकें, अच्छा ये तिनखा आ रहा है, क्या करूं, बंद हूं, बोलो, ये पलकें पूछती नहीं है बंद होने के लिए, और इनको कहने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप जैसे कि स्वाभाविक रूप से हमारी पलकें हमारे आंखों की सुरक्षा करती हैं, वैसे स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सुरक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार से बताया गया है कि यदि कोई नोकीली सुई लेकर आंखों में किसी के अंदर डालने की कोशिश करे, तो पलके कहती हैं पहले मेरे अंदर तुम्हें जाना होगा। वैसे ही भगवान अर्जुन के सामने खड़े होते, कोई भी प्रतिद्वंद्वी यदि अर्जुन का संहार करने के लिए सामने उठ खड़ा होता, तो भगवान कहते थे ओवर मी, जैसे संसार में कहा जाता है ना, ओवर मी फर्स्ट। तो ये भगवान का तरीका अपने साधुओं की सुरक्षा करने का। तो श्रील प्रभुपाद द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यहां पर आप क्या देख रहे हो, बिल्ली अपने मुंह में किसे उठाए है, चूहे को। तो चूहे के लिए प्रभुपाद का यह प्रसिद्ध उदाहरण है, चूहे के लिए वही बिल्ली का मुंह क्या बन जाता है, मृत्यु का मुंह, मृत्यु का मुंह बन जाता है। तो जो भगवान के अनन्य भक्ति में नहीं लगा वो चूहे के समान है, और उसके लिए भगवान मूर्तिमान मृत्यु के रूप में आते हैं और उसे इस प्रकार से जकड़ लेते हैं। परंतु वही बिल्ली जब उसी अपने मुंह से अपने छोटे से पिल्ले को, बच्चे को पकड़ती है, वही मुंह है, वही दांत है, भाव क्या है, सुरक्षा का। अब भाव है सुरक्षा का, वही मुंह वही दांत, चूहे के लिए भाव है असुरक्षा का, और एक बच्चे के लिए भाव है उसके सुरक्षा का। तो यहां पर हम अब दो चीजें देखेंगे कि आपको हम आज दो वीडियो दिखाने वाले हैं, और काफी इसमें इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मेरे रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। इसे यहां पर लिखा हुआ कि प्रेम के कारण सुरक्षा। अब जैसे बिल्ली अपने बच्चे को अपने ही मुंह में रखकर सुरक्षा प्रदान करती है प्रेम के कारण, तो एक प्रेम के कारण कोई व्यक्ति किसी को सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरा दया के कारण। यदि अनजान व्यक्ति भी हो परंतु दया का भाव आ जाए तो उस अनजान व्यक्ति को भी कोई अगला व्यक्ति दया के वजह से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाऊंगा। ये पहला जो वीडियो है इसके अंदर एक शेरनी और उसके कुछ 3-4 पिल्ले, शेरनी के हैं ध्यान में रखना, तो कैसे एक मां, चाहे मां मां होती है, चाहे वो शेरनी मां के रूप में हो या मां शेरनी के रूप में हो तो मां कैसे अपने बच्चे की सुरक्षा देखती है। तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कैसे बच्चे यहां वहां मस्ती करते हुए और वो मां, इसमें एक अगर आपको ठीक से सुनाई ना दे तो मैं बोल दूंगा कि जो शेरनी दिखाई गई है और जो उसका जो नरेशन है, जो व्यक्ति इंग्लिश में नरेशन कर रहा है, तो नरेशन में वो कहते हैं कि जो जबड़ा होता है शेरनी का और जो उसके दांत और उसके जबड़े में जो ताकत होती है वो इतनी होती है कि 500 किलो मांस के अंदर वो चबाकर उसको नोचकर बाहर निकाल सकती है। 500 किलो मांस में इतनी ताकत होती है और इतने ताकत भरे जबड़े से वो अपने छोटे नन्हे से पिल्लों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर लाती। तो वही जबड़ा है 500 किलो मांस में वो नोच के खा ले और वही जबड़ा अपने पिल्लों को कैसे सुरक्षित रखता है।
Our story begins with a tantalizing glimpse of something very special, a cub just 10 days old. Wild cubs as young as this have never been filmed before. For their first 6 weeks, most cubs usually hide away in their dens, hardly glimpsing daylight. These are unusually adventurous. They seem totally unaware of the dangers. Although their eyes are just opening, they won't see clearly for another 6 weeks. They're the mother's first litter, and they're going to be quite a test for her. The tigress must pick them up by the scruff of the neck. It's a delicate operation. A little too much pressure, and she'll hurt her cub. She can bite with a force of nearly 500 kilos, but this requires the gentlest touch. Tigers usually have 2 or 3 cubs. 4 are quite a handful, and these already seem more challenging than most. The ratio between the sexes among newborns is usually equal. True to form, 2 of these cubs are male and 2 are female. It would be rare indeed for all 4 of them to reach maturity. Many dangers lie ahead. At this size, they make a snack for even the smallest predator. Their mother must make sure that everyone is accounted for. With 2 back in the den and 1 on its way, there's only 1 straggler left to worry about. The cub's contact cry makes sure he's not forgotten. As long as the cubs call, their mother is compelled to keep retrieving them. But this would try any mother's patience. The young cub's life is very precarious. Had the mother been away hunting at a moment like this, the outcome could have been very different. She's clearly going to be a devoted mother, but she still has a lot to learn. This is not the way to do it. Filming such behaviour is unprecedented. It gives us an extraordinary opportunity to follow these cubs as they grow.
लाइट बंद ही रहती है अभी यहाँ पर आपने देखा कि कैसे ये शेरनी अपने बच्चों को उसी जबड़े से आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा इट कैन बाइट इनटू 500 किलोस सो इट हैज टू बी सो केयरफुल when it is lifting, when she is lifting her own cubs. Because she has all the power, but she has to use only that much which is required to lift her little cubs. And now, there is another video which I am going to show you, where is one leopard, ek cheeta, jisne ek garbhavati bandar ko pakda. बबून बबून उसको कहते हैं अंग्रेजी में एक अलग प्रकार का बंदर होता है लेकिन ये बंदरियां कहेंगे जो गर्भवती थी और इस चीता ने पकड़ा और उसी समय उसने बच्चे को जन्म दिया और ये बहुत ही टचिंग वीडियो है कि वो चीता अब उस नवजात अभी अभी पैदा हुआ वो बंदर के बच्चे के साथ उसका व्यवहार क्या होता है तो ये प्रेम के कारण सुरक्षा हमने देखी अब इसमें हम देखेंगे दया के कारण सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है
too often. It was madness, a wild and reckless risk. But by some miracle of fate, Lakedema silenced the baboon before the enormous troop could notice. In that instant, Lakedema, the curious cub, made one of her many transformations. She was suddenly a slayer of her most feared enemy. Quite suddenly, this already momentous kill took an amazing twist. Something moved in the dead baboon's fur. A day-old newborn. It took a moment for Lakedema to notice. She's always been curious. But instead of a swift bite to the neck, Lakedema stopped, then lay down with the baboon. She didn't know how to react. Hyenas would normally send her scurrying for the trees, but this time, she gently lifted the baby to safety first. Only then did she return to confront the hyena. It was an aggressive defense, protecting the baby, not defending her kill. Then she turned her attention back to the baby. For a cub not yet 2 years old, the sudden arrival of a baby baboon in her life must have been confusing. Lakedema's eyes never left the baby for hours. And strangely, this newborn started following her everywhere, reaching out to her, most likely imprinting on his new surrogate mother. And Redeemer seemed to be caught up in our own internal conflict. A young leopard at a confusing crossroads of life, torn between being a predator and an inquisitive cub. Something more maternal and compassionate still within her at that moment. Settle down to sleep, exhausted by the event, cuddling for hours against the winter chill.
यहां पर देखिए कि एक जानवर और खूंखार जानवर, अज्ञानी खूंखार जानवर के अंदर भी दया की भावना आकर वो छोटे से बंदर के बच्चे की सुरक्षा उसने करने लगा। तो कल्पना कीजिए, अब भगवान जिनके अंदर इतनी करुणा है हमारे लिए, इतनी दया है हमारे लिए, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, वो भगवान श्री कृष्ण जिनके अंदर करुणा अथा समुद्र से भी ज्यादा है हमारे लिए, प्रेम अथा समुद्र से भी ज्यादा है हमारे लिए। तो हमने ये जो दो उदाहरण देखे, प्रेम के वजह से और करुणा के वजह से। पहले वीडियो में शेरनी अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम करती थी तो अपने जबड़ों से उसकी सुरक्षा की, दूसरे वीडियो में दया के वजह से। तो भगवान के अंदर दोनों हैं हमारे प्रति, प्रेम भी है और दया भी है। तो क्यों नहीं भगवान जो आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, मेरे अंश हैं, जो जिनको मैं इतना प्रेम करता हूं, जिनके ऊपर मैं इतनी दया करता हूं, क्यों ना भगवान ये कहें आज के श्लोक में, परित्राणाय साधु नाम। और भगवान श्री रामचंद्र, आज के हमारे इस कथा को यहीं हम विराम देंगे स्लाइड से। प्रभु श्री रामचंद्र, इनका एक बहुत सुंदर नाम रामायण के अंदर, हमने बहुत से रामचंद्र जी के नाम सुने होंगे परंतु ये नाम अनोखा ऐसा नाम है कि आपने कभी सुना नहीं होगा। जैसे हम रामचंद्र जी के अलग अलग नाम हैं, रघुनाथ उनका एक नाम है, रघुवीर उनका एक नाम है, ऐसे अलग अलग उनके नाम हैं। ये एक नाम है, बहुत ही अनोखा और विशेष नाम है भगवान श्री राम का, जिसको वाल्मीकि मुनि कहते हैं प्रथमांजलि किंकर। प्रथमांजलि किंकर, किंकर का अर्थ होता है सेवक, संस्कृत में किम करोति, कि सेवक हर समय मालिक को पूछता है कि मैं क्या करूं आपके लिए, तो इसलिए उसको सेवक को संस्कृत में कहते हैं किंकर। तो यहां पर प्रभु श्री राम का यह नाम है प्रथमांजलि किंकर, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि कोई भी जीव यदि प्रभु श्री राम के सामने आकर प्रथम बार अपनी अंजलि अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से ये कह दे कि हे श्री राम, मैं आपका किंकर हूं आज से, तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भगवान श्री राम अपना सर्वस्व उस किंकर को दे देते हैं। सक्रदेव प्रपन्नो यस तवास्मि इति याचते अभयम तु सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतम मम। ये श्लोक स्वयं श्री राम ने कहा है। सक्रदेव प्रपन्नो यस, यहां पर जैसे हम कह रहे हैं कोई बद्ध जीव यदि एक बार भी मेरे सामने आकर हाथ जोड़कर कह दे हे श्री राम, आज से मैं आपका तव अस्मि, मैं आपका किंकर। भगवान कहते हैं मेरा ये व्रत है, भगवान बोल रहे हैं मैं व्रत ले रहा हूं। अभयम तु सर्वदा तस्मै, मैं न केवल उसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता हूं बल्कि उसे मैं अभय दान में उसको मैं अभय फियरलेसनेस दे देता हूं नित्य रूप से नित्य काल तक। ये भगवान कह रहे हैं ददाम्येतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। इसलिए वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम को ये बहुत ही अनोखे विशेष नाम से पुकार रहे हैं, प्रथमांजलि किंकर। तो जो हम इस भौतिक संसार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्रेमवश दयावश यदि अपनी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है, तो भगवान के अंदर जो इतना प्रेम और इतनी दया हमारे लिए है, तो क्यों हमें संकोच करना चाहिए भगवान के समक्ष जाने से और उनके सामने आकर हाथ जोड़कर कहने से तव अस्मि। और इसलिए आने वाली जन्माष्टमी एक बहुत सुंदर उत्सव है, बहुत सुंदर अवसर है जब हम भगवान श्री राधा मदन गोपाल जी के सामने आकर हाथ जोड़कर कह दें कि इतने जन्म जन्मांतर तक मैं लगा रहा अपने आप को सुरक्षित बनाते हुए और ऐसे ऐसे लोगों को अपने हाथ देते हुए कि वो मेरी सुरक्षा करेंगे, परंतु मैंने जान लिया है कि इस पूरे संसार में पूरी सृष्टि में यदि मुझे पूर्ण रूपेण कोई सुरक्षा प्रदान कर सकता है तो वो केवल आप हो मेरे श्री भगवान। तो इस प्रकार से याचना प्रार्थना करते हुए यदि हम इस बार की जन्माष्टमी मनाएं तो भगवान का ये जो विशेष नाम है वो भगवान हमारे लिए भी वो नाम सिद्ध करेंगे, प्रथमांजलि किंकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे अगले सेटिंग में, मेरे ख्याल से अगले बुधवार को तो हमारा गीता कोर्स रहेगा, उसके अगले बुधवार हम परित्राणाय साधु नाम का भाग 3 लेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदी।